योएल की पुस्तक और लाओदीकियाई सातवें दिन एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 17
नंबर 17। हमने पिछले लेख को अब्राम और पौलुस की भविष्यवाणियों पर एक अधूरी चर्चा के साथ समाप्त किया था, जो पंक्ति दर पंक्ति रखने पर 430 वर्षों की ऐसी अवधि बनाती है जो 30 वर्षों के बाद 400 वर्षों से मिलकर बनी है। मेरा मानना है कि धर्मशास्त्रीय जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 वर्षों को 400 वर्षों के बाद आने वाली अवधि मानते हैं, परंतु सामान्यतः जब इस विषय पर विचार किया जाता है तो 30 वर्षों को अवधि की शुरुआत में रखा जाता है। क्या क्रम 400 के बाद 30 का है या 30 के बाद 400 का? ये 30 के बाद 400 ही है, क्योंकि 30 वर्षों की अवधि स्थापित करने के लिए अनेक साक्ष्य है। ये अवधि एक दूसरी भविष्य सूचक अवधि से जुड़ी है जो इसके बाद आती है।
उत्पत्ति 48:46 में जब यूसुफ ने फिरौन की सेवा आरंभ की तब उसकी आयु 30 वर्ष थी। फिर प्रचुरता के 7 वर्ष आरंभ हुए, जिनके बाद 7 वर्षों का अकाल आया। मसीह के प्रतिरूप के रूप में यूसुफ की 30 वर्ष की आयु के बाद 2022 दिनों की 2 अवधियां आईं। जब मसीह 30 वर्ष के थे तब उनके बाद 2660 की 2 अवधियां आईं, जो मिलकर 2022 बनती हैं, जो आगे चलकर 2 राज्यों पर 7 काल से जुड़ता है।
दाऊद 30 वर्ष का था जब वो राजा बना और उसने 40 वर्षों तक राज्य किया, जैसा कि 2 शमूएल 5:4 में लिखा है। दाऊद मसीह का प्रतिरूप है और जब मसीह 30 वर्ष के थे तो उनका बपतिस्मा हुआ और फिर उन्हें 40 दिनों के लिए मरुभूमि में ले जाया गया और उनके पुनरुत्थान के बाद, जिसका प्रतिरूप उनके बपतिस्मा में था, उन्होंने 40 दिनों तक शिष्यों के साथ रहकर उन्हें स्वयं सिखाया। क्रूस पर यरूशलेम का विनाश दया से 40 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया, जो उनकी वाचा के इतिहास की शुरुआत किया मरुभूमि में मरने के 40 वर्षों के समानांतर था।
येजकेल 1:1 के अनुसार जब येजकेल को भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया गया तब उसकी आयु 30 वर्ष थी। मैं अभी येजकेल के 30वें वर्ष के बाद की अवधि पर चर्चा नहीं करूंगा, पर उसकी सेवकाई कितने समय तक चली इस संबंध में स्थापित तथ्यों का एक संक्षिप्त AI सारांश प्रस्तुत करूंगा। येजकेल की भविष्यवाणियां पुराने नियम में सबसे सटीक रूप से दिनांकित भविष्यवाणियों में से हैं। पूरी पुस्तक में 13 विशिष्ट तिथियां दी गई हैं। ये सभी यहोयाकीन के निर्वासन के वर्ष से गिनी जाती हैं। 95 ईसा पूर्व को वर्ष 1 माना गया, जिससे लगभग 22 वर्षों में फैला एक स्पष्ट कालानुक्रमिक ढांचा मिलता है।
यीशु 30 वर्ष के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर उन्होंने बहुतों के साथ 1 सप्ताह के लिए वाचा की पुष्टि की।
भविष्यवाणी के अनुसार विरोधी मसीह मसीह के प्रतिरूप के अनुसार संचालित होता है, और जैसे मसीहा ने स्वर्गीय महायाजक का कार्य ग्रहण करने से पहले 30 वर्षों की तैयारी की थी, वैसे ही विरोधी मसीहा के लिए चिन्हित तैयारी का 30 वर्षीय भविष्यवाणी काल 508 में डेली के हटाए जाने से लेकर 508 तक रहा, जब पापाई सत्ता को नकली महायाजक के रूप में अधिकार मिला। ठीक वैसे ही जैसे मसीह का अपने बपतिस्मा के समय सामर्थ्य से अभिषेक हुआ था, तब पापाई अंधकार के 2860 वर्ष मसीह के बपतिस्मा से क्रूस तक के शुद्ध प्रकाश के 2860 दिनों के समानांतर पड़े, और ये 1798 में पापाई सत्ता के घातक घाव के साथ मेल खाता है।
ऐसे पूर्ववर्ती 2 भाग वाले कोई भी कालखंड जो 30 वर्षों की अवधि से प्रारंभ होते हैं, अब्राम की 3 चरणीय वाचा की प्रक्रिया के प्रथम चरण से पूर्व के नहीं है। अतः सर्वप्रथम उल्लेख अब्राम का ही है, हालांकि ये इसी प्रकार केवल तब हो सका जब उसे पौलुस की दूसरी गवाही से पुष्टि मिली। जब पौलुस ने यह लिखा तो 400 वर्ष की भविष्यवाणी 430 वर्ष की भविष्यवाणी बन गई, जिसमें प्रारंभिक 30 वर्ष अंतिम कालावधि से अलग कर दिए गए हैं।
मैं मसीह के चरित्र के आधार पर, जिसे अल्फा और ओमेगा के रूप में दर्शाया गया है, यह तर्क देता हूं कि 144,000 की वाचा की प्रक्रिया में, जो अब्राम और पौलुस की 30 वर्ष फिर 400 वर्ष वाली द्विगुण भविष्यवाणी का ओमेगा है, उसका समकक्ष वाचा के इतिहास के ओमेगा में होना चाहिए, जो 144,000 की मुहरबंदी का इतिहास है। 30 वर्षों की एक अवधि, जिसके बाद एक और पृथक अवधि आती है, ऐसे ढंग से पूरी होनी चाहिए जो समय लागू न करे।
परंतु अब्राम की आधारभूत 437 वर्षों की भविष्यवाणी को पूरा करें। अच्छा होगा कि आप पिछले कथन को फिर से पढ़ें, फिर इस बिंदु पर लौटकर आगे बढ़ें।
यीशु, यूसुफ, दाऊद और यहेजकेल ये सब ऐसे कार्य की तैयारी में 30 वर्ष तक रहे जो अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिरूप होगा। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल, यूसुफ याजक मसीह का प्रतिरूप और राजा दाऊद, चार प्रतीक है, पर उनमें से जो स्वर्गीय महायाजक का प्रतिनिधित्व करता है उसके एक मानवीय और एक दैवीय प्रतिनिधि है। वे चारों साक्षी अब्राम के 30 वर्षों के पश्चात आने वाले एक भविष्य सूचक काल पर सहमत है।
विरोधी मसीदे 30 वर्षों तक तैयारी में थी, फिर 3660 वर्षों तक उसे अधिकार मिला, जो 7798 में उसकी पहली मृत्यु होने तक चला। वो दूसरी मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि जब अनुग्रह काल समाप्त होता है ये तेक तो वो फिर मरती है। दूसरी मृत्यु शाश्वत तेक है। हम एक पुनरुत्थित उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं, क्योंकि मसीह सदा के लिए नहीं मरे, उन्होंने दूसरी मृत्यु नहीं भोगी। जब पापसी का घातक घाव भर जाएगा तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 बताता है कि वो फिर 42 महीनों तक राज्य करेगी, जो समय का कोई तत्व शामिल किए बिना एक भविष्य सूचक अवधि का प्रतीक है। जब वो रविवार के कानून के समय पुनर्जीवित होती है तो उसके कार्य का विरोध करने वाली सेना वे लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य 11 के 3.5 दिनों के अंत में पुनर्जीवित हुए थे। दो पुनर्जीवित शक्तियां, जो दोनों ही प्रतीक हैं, एक सातवें दिन के सप्त का और एक सूर्य का, समूचे विश्व के लिए संदर्भ बिंदु बन जाती हैं, जब मानव जाति जीवन या मृत्यु के लिए अपना अंतिम चुनाव करती है।
रविवार के कानून के समय मसीह विरोधी, जो कि पशु भी है, अजगर स्वयं यानी पशु और झूठा नबी, इनके त्रिगठबंधन का प्रतिनिधित्व करेगा। ये तीन शक्तियां परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध एकजुट होंगी, जो सभी पहाड़ों से ऊपर उठाई जाने वाली है। परमेश्वर की विजयी कलीसिया 30 वर्षों की तैयारी में है। ये 30 वास्तविक वर्ष नहीं, बल्कि एक स्थापित भविष्य सूचक अवधि है जिसमें 30 जुड़ा है, और 1844 में दिए गए आदेश के बाद भी ये एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभावी रही, ये दर्शाते हुए कि भविष्य सूचक समय का प्रयोग अब मान्य नहीं रहा। ये समझना सरल है कि ये 30 वर्ष नबी, याजक और राजा के लिए तैयारी की अवधि का प्रतीक है, जो विजयी कलीसिया के रूप में महिमा के राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। हेजकेल, मसीह, यूसुफ और दाऊद के चार साक्षी परमेश्वर के राज्य के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी समयावधि में जब पोपत्व और त्रिगठबंधन संसार को अरम गिदोन की ओर ले जा रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय विजयी कलीसिया उत्थापित की जाती है, और पुराने तथा नए नियम की गवाही के अनुसार वाचा की प्रजा, जो 144,000 हैं, याजकों का राज्य बनेंगे।
तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर और पवित्र याजकता के रूप में बनाए जा रहे हो, ताकि आत्मिक बलिदान अर्पित करो, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य हो। 1 पत्रस 2:5।
याजकों को मंदिर में सेवा आरंभ करने के समय 30 वर्ष का होना आवश्यक था, इसलिए रविवार के कानून से पहले एक ऐसा काल होता है जिसमें याजकत्व को पहिलौठों की लहर भेंट के रूप में सेवा करने के लिए तैयार किया जाता है। वे याजक जो 144,000 है, वाचा के दूत द्वारा संपन्न किए गए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लेवियों के रूप में दर्शाए गए हैं। रविवार के कानून तक ले जाने वाला एक भविष्य सूचक काल है, जिसमें एक शुद्धिकरण प्रक्रिया अंतिम वर्षा के काल के लिए पवित्रीकृत सेवकाई को तैयार करती है। ये तैयारी रविवार के कानून पर समाप्त होती है, इसलिए 30 वर्षों का काल याजकों की तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार याजक के लिए आवश्यक आयु के अनुरूप ठहरता है। महायाजक के रूप में मसीह ने अपनी सेवकाई 30 वर्ष की आयु में आरंभ की, और क्योंकि यूसुफ मसीह का प्रतिरूप है, उसने भी अपनी सेवा 30 वर्ष की आयु में आरंभ की। नकली मसीह की तैयारी 30 वर्षों तक चली, इसलिए हमारे पास 3 साक्षी हैं कि 30 वर्षीय काल याजकत्व की तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है।
आसन्न महान संकट उन लोगों को छांट देगा जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया है, और उसके पास अंतिम वर्षा के लिए शुद्ध, सच्ची, पवित्रीकृत सेवकाई तैयार होगी। चयनित संदेश, पुस्तक 3:5-5।
सिस्टर वाइट से ध्येय सिखाती है कि जब भी कलीसिया शुद्ध होती है, भविष्यवाणी की आत्मा सक्रिय रहती है। जब बड़ा मुद्दा खरपतवार को छांट देगा, तब आपके पास एक पवित्र सेवकाई होगी जो यीशु और याजक यूसेफ, जो दिव्य और मानवीय दोनों है, यीशु और भविष्यद्वक्ता हिजकिल, यीशु और राजा दाऊद से मिलकर बनेगी। जो लोग 30 वर्षों द्वारा प्रतीकित अवधि में तैयार किए जाते हैं, वे 144,000 में होंगे और नबी, याजक और राजा के रूप में निरूपित किए गए हैं। ये तीनों मनुष्य मसीह के नबी, याजक और राजा रूपी कार्य के बाइबलीय प्रतीक है। इसलिए संख्या 30 हमें ये निष्कर्ष निकालने देती है कि इन तीनों श्रेणियों में जो बाइबलीय प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत है और जिन्हें 30 वर्षों तक तैयार किया गया था, मसीह के साथ जोड़े जाने पर वे दिव्यता और मनुष्यता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार वे याजक जो प्रतीकात्मक 30 वर्षीय अवधि में तैयार किए गए हैं, दिव्यता और मनुष्यता के संयुक्त ध्वज के रूप में निरूपित किए जाते हैं। पोप के अंतिम रक्त स्नान के 42 महीने उसी समय घटित होते हैं जब मसीह अपने चेलों में होकर 42 महीने तक मनुष्यों के बीच चलता है। दासता और उत्पीड़न के 42 महीने जो मुक्ति पर समाप्त होते हैं, जैसा कि अब्राम की दोहरी भविष्यवाणी के 400 वर्षों द्वारा दर्शाया गया है। अब्राम के 400 वर्ष लाल समुद्र पर मिली मुक्ति के साथ समाप्त होते हैं, जो पोप के प्रतीकात्मक 42 महीनों के अंत में परख की अवधि के समापन का एक शास्त्रीय बाइबलीय उदाहरण है। 42 महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून से लेकर जब तक मानवों के लिए अनुग्रह का समय समाप्त नहीं हो जाता, परीक्षा के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी उन 42 महीनों में 30 वर्षों की तैयारी की अवधि के बाद मसीह अवशेष जन्मे वाचा की पुष्टि कर रहे हैं। ख्रिस्त विरोधी का नकली याजक अपना अंतिम अंत प्राप्त करता है, ठीक वहीं जहां मसीह अपने क्रम में मरे थे, जो कि ठीक वही स्थान है जहां मिस्र का राजा फिरौन अपने क्रम में मरा था। कर्मेल पर्वत पर बाल के भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला गया। इस प्रकार रविवार के कानून के समय झूठे भविष्यद्वक्ता की मृत्यु की पहचान होती है। रविवार के कानून के समय एक झूठा भविष्यद्वक्ता होता है जिसे तब मार डाला जाता है, अजगर जिसका प्रतिनिधित्व फिरौन करता है, और पशु जिसका प्रतिनिधित्व पापसी करती है। ये सभी रविवार के कानून के समय परमेश्वर के याजकों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं के साथ संघर्ष में दर्शाए जाते हैं। रविवार के कानून से ठीक पहले कलीसिया को शुद्ध किया जाता है और भविष्यवाणी का वरदान ठीक उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाता है जहां झूठा भविष्यद्वक्ता मरता है। उसके बाद से संघर्ष सच्चे या झूठे भविष्यद्वाणी के संदेश पर होता है। प्रतीकात्मक 7 वर्षीय इब्द करती है जो रविवार के कानून से पहले आता है। ये अवधि याजकों की तैयारी की अवधि है, क्योंकि हर बात में मसीह उनका आदर्श है, क्योंकि वे वही लोग हैं जो मेमने का अनुसरण करते हैं। अब्राम की भविष्यवाणी के पहले 30 वर्षों के भीतर वाचा स्थापित कर दी गई थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि याजकों की तैयारी जिस भी अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, वो वही समय है जब प्रभु अपनी वाचा को 144,000 के साथ नवीनीकृत करते हैं, जैसा कि अब्राम के अल्फा इतिहास द्वारा प्रतिरूपित है। वो अवधि उन याजकों की तैयारी का समय है जो 30 वर्ष की आयु में रविवार के कानून के समय अपनी सेवा आरंभ करते हैं, जब वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए जाते हैं, जैसा कि मसीह अपने बपतिस्मा के समय हुए थे। अब्राम के अल्फा इतिहास से जो एक और सत्य निकाला जा सकता है, वो ये है कि जो भी अवधि रविवार के कानून तक ले जाती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा सदैव अल्फा से अधिक शक्तिशाली होता है। रविवार का कानून वो ओमेगा है जिसे 22 अक्टूबर 1844 क्रूस मिस्र में फसह आदि द्वारा निरूपित किया गया है।
रविवार का कानून उस समयावधि के अंत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे 30 वर्ष की अवधि के रूप में दर्शाया गया है। इसे उद्धार की लगभग हर प्रमुख कथा में पूर्वाभास स्वरूप दिखाया गया है और ये अब्राम से आरंभ हुई चुने हुए लोगों की वाचा इतिहास का भी अंत है। उस अवधि के अंत के संबंध में ऐसे भविष्य सूचक प्रमाणों के भार और स्वयं उस अवधि के गंभीर उद्देश्य को देखते हुए प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? एक भविष्यवाणी काल है जिसे 30 वर्षों से दर्शाया गया है, जो अनेक साक्ष्यों के आधार पर रविवार के कानून पर आकर समाप्त होता है। उस बिंदु के बाद एक और काल शुरू होता है जिसे विभिन्न संख्यात्मक मानों में दर्शाया गया है और उनमें से प्रत्येक अवधि रविवार के कानून के पश्चात आने वाले भविष्यवाणी इतिहास की एक रेखा की गवाही प्रस्तुत करती है। उन अवधियों में से कुछ कलीसिया के इतिहास की आंतरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करती हैं और कुछ संसार के इतिहास की उस बाहरी रेखा का जो आर्मागेडन की ओर अग्रसर है। शायद इस मोड़ पर ये याद दिलाना उचित होगा कि हम अंतिम दिनों में किसी भी समय संबंधी भविष्यवाणियों के प्रयोग को ऐसी कोई पहचानी जा सकने वाली तिथियां निर्धारित करने के अर्थ में अस्वीकार करते हैं, जब तक कि विपत्तियों के अंत में दिन और घड़ी की घोषणा न की जाए। मैं भविष्य सूचक समय को अब लागू न करने के अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दानियेल के 12वें अध्याय का उपयोग करूंगा। 12वें अध्याय में 3 पद हैं जो भविष्य सूचक समय को निर्दिष्ट करते हैं।
और मैंने उस सन के वस्त्र पहने हुए मनुष्य को सुना जो नदी के जल के ऊपर था, जब उसने अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ को स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाई जो सदा सर्वदा जीवित है कि ये एक काल कालों और आधा काल तक होगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर कर चुका होगा तब ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। दानियेल 12:7। और जिस समय से नित्य बलिदान हटाया जाएगा और उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, उस समय से 1290 दिन होंगे। दानियेल 12:51। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और 1335 दिनों तक पहुंचता है। दानियेल 12:2-35।
मिलर वादियों को इन तीनों पदों में से प्रत्येक की सही समझ थी। ये तीनों भविष्यवाणियां उन सत्यों का हिस्सा है जो आधार का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी इन पदों की मिलरवादी समझ दिन के बदले वर्ष के सिद्धांत को लागू करने पर आधारित थी। चूंकि अब समय नहीं रहा, इसलिए इन पदों का एक अन्य अनुप्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सभी भविष्यवाणियां अंतिम वर्षा के काल की बात करती हैं। इन पदों की ऐसी अंतिम वर्षा से संबंधित समझ होनी चाहिए जो संदेश बनाने के लिए समय का प्रयोग न करे और पदों की मिलरवादी समझ से असहमति भी न रखे। इन तीन पदों के मध्य पद 11वां पद के बारे में मिलरवादियों का सही दृष्टिकोण ये है कि वो एक दोभागीय काल का प्रतिनिधित्व करता है जो 30 वर्षों की अवधि से आरंभ होता है और उसके बाद तशली 60 वर्ष आते हैं। 11वां पद उस 30 वर्षीय अवधि की पहचान करता है जो रविवार के कानून से पहले आती है, जिसे उजाड़ लाने वाली घृणित वस्तु की स्थापना द्वारा दर्शाया गया है। परमेश्वर के वचन में दानियेल का 12वां अध्याय वो अध्याय है जो परमेश्वर की प्रजा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जो अंतिम दिनों में अंत के समय तब घटित होती है जब दानियेल की पुस्तक की एक भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है। पद 11 में हमें एक ऐसी भविष्यवाणी मिलती है जिसे प्रवर्तकों ने ठीक ठीक 30 वर्ष की अवधि के रूप में समझा, जो 2960 वर्ष की अवधि में प्रवेश कराती है। 12वां अध्याय में पद 7, 11 और 12 की तीनों भविष्यवाणियां अंत के समय तक मुहरबंद रहती हैं। अंत के समय वे तीनों भविष्यवाणियां निश्चित ही खोली जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं होता। उसी अध्याय में बाइबल में मानव अनुग्रह काल के समापन का सबसे स्पष्ट निरूपण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए 12वां अध्याय एडवेंटवाद के आरंभ की अपेक्षा उसके अंत की पहचान को कहीं अधिक स्पष्टता और विशिष्टता से प्रस्तुत करता है। दानियेल अध्याय 12 की तीन भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र के उसी खंड में मुहर बंद की गईं, जहां मुहर लगने और मुहर खुलने का प्राथमिक भविष्य सूचक अर्थ परिभाषित होता है। वे तीनों भविष्यवाणियां 144,000 के इतिहास में खुलती हैं, क्योंकि अल्फा और ओमेगा सदा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के साथ प्रदर्शित करता है। अध्याय 12 की तीन भविष्य सूचक अवधियों में जो खुलता है वो परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन के अंतिम मुहर खोलने का प्रतिनिधित्व करता है। वो मुहर खोलना प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में प्रस्तुत किया गया है, जब यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अनुग्रह काल के समापन से ठीक पहले खोला जाता है। दानियल 12 का पद 11 30 वर्ष की अवधि से आरंभ हुई एक दोहरी भविष्यवाणी की अब्राम और पौलुस द्वारा की गई पहली प्रस्तुति का समकक्ष है। दानियल के 12वें अध्याय की तीन भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक कालखंड है, जिनकी मुहर अंत के अंतिम समय में खोली जाती है और उनका खुलना परमेश्वर की प्रजा की अंतिम शुद्धि की ओर ले जाता है। उन तीनों में पहली भविष्यवाणी स्वयं मसीह ने दी है, और जब वे वो भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं तो वे सन का वस्त्र पहने हुए जल पर खड़े होते हैं। वे 1360 वर्षों के रूप में दर्शाए गए एक भविष्य सूचक कालखंड के अंत को चिन्हित करते हैं और उस कालखंड के अंत को परमेश्वर की प्रजा की शक्ति के बिखराव की समाप्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा वे 144,000 है और वे तितर बितर हो चुके हैं। मसीह ने केवल पानी पर खड़े होकर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बल्कि वो प्रश्न कब तक शब्दों से शुरू होता है। कब तक एक भविष्य सूचक प्रतीक है, और यही प्रश्न यीशु से भी पूछा जाता है जब दानियेल 8 के पद 13 में प्रश्न किया जाता है, कब तक।
और एक ने उस लिनन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से जो नदी के जल के ऊपर था कहा, इन अद्भुत बातों के अंत तक कितना समय लगेगा। और मैंने सन का वस्त्र पहने हुए उस मनुष्य को जो नदी के जल के ऊपर था ये कहते सुना, उसने अपना दाहिना और बायां हाथ आकाश की ओर उठाकर उसकी शपथ खाई जो सदा जीवित रहता है, कि ये एक समय, दो समय और आधा समय तक होगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर कर देने का काम पूरा कर लेगा तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी। दानियल 12:6-7।
हिद्देकेल नदी के दर्शन में जहां यीशु को सन के वस्त्र पहने मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनसे ये प्रश्न किया गया, इन अद्भुत बातों का अंत कब होगा। और उलाई नदी के दर्शन में जहां यीशु को पालमोनी वह एक विशिष्ट संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनसे पूछा गया, दैनिक बलि और उजाड़ की अधर्मता के विषय में ये दर्शन कब तक रहेगा, ताकि पवित्र स्थान और सेना दोनों पैरों तले रौंदे जाए। बहन वाइट कहती हैं कि शिनार की महान नदियों के किनारों पर दानियल को दिए गए दर्शन अब पूर्ति की प्रक्रिया में है, और दोनों नदी दर्शनों के संबंध में यीशु से वो भविष्य सूचक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर हमेशा रविवार के कानून के रूप में आता है। फिर भी दोनों उत्तर भविष्य सूचक समय के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका अंत 1844 में हो गया। अग्रदूतों ने अध्याय 8 के अग्रों में जमीन देंगे रन ठीक ठीक पहचाना, और वे समझते थे कि 1898 वो समय था जब परमेश्वर के लोगों की शक्ति का तितर बितर होना समाप्त हुआ। परंतु 1844 के बाद जब परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन के समय आवेदन का अंत हो गया, तो कब तक का भविष्य सूचक प्रश्न अग्रदूतों की समझ को इस प्रकार पुनः व्यक्त करता है, 2300 दिनों तक, तब शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा और दानियल के अंतिम दर्शन की सब अद्भुत बातें पूरी हो जाएंगी, जब पवित्र लोगों का 3 और आधे प्रतीकात्मक दिनों तक का तितर बितर होना समाप्त होगा। दानियल की पुस्तक के अंतिम 3 अध्यायों में हिद्देकेल नदी का दर्शन और अध्याय 7-9 में उलाई नदी का दर्शन सिस्टर वाइट द्वारा शिनार की महान नदियां के रूप में पहचाने गए हैं। सभी ऐतिहासिक और बाइबलीय विद्वान मानते हैं कि शिनार से केवल 2 नदियां संबंधित हैं, और दोनों ही महान नदियां हैं। वे 2 नदियां टाइग्रिस हिद्देकेल और यूफ्रेटिस है। उलाई नदी शिनार की यूफ्रेटिस नहीं है, वो फारस में एक छोटी मानव निर्मित नहरनुमा नदी है, शिनार में नहीं। वो उलाई नदी जिसके दर्शन में एडवेंटिज्म की नींव और केंद्रीय स्तंभ निहित है, शिनार में स्थित नहीं है। फिर भी भविष्यवक्त्री उलाई को यूफ्रेटिस
शिनार की महान नदियों में से एक के रूप में पहचानती हैं। हिद्देकेल का दर्शन अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के उस बाहरी इतिहास को प्रस्तुत करता है जो संसार को अर्मगेदोन की ओर ले जाता है, और उलाई का दर्शन मसीह के उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे अपने देवत्व को मनुष्यत्व के साथ संयुक्त करते हैं। भविष्य सूचक प्रेरणा उलाई नदी को फरात नदी के साथ दूसरे साक्षी के रूप में उपयोग करती है ताकि उस कार्य की पहचान हो सके जो मसीह अपने देवत्व को मनुष्यत्व के साथ जोड़कर पूरा करते हैं। यूफ्रेटिस और टीग्रिस दोनों का उद्गम एडन में हुआ और वे वाचा के इतिहास के समूचे काल में बहते चले आते हैं। जब 22 अक्टूबर 1844 को वे एडवेंटिज्म के केंद्रीय स्तंभ में आ मिलते हैं तो यूफ्रेटिस मानव निर्मित उलाई नहर के साथ संयुक्त होकर देवत्व और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है जो 144,000 के रूप में दर्शाए गए लोगों में विश्वास का अभ्यास किए जाने से संपन्न होता है। उलाई परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन के अधिकार पर एक परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि ये दुनिया के विशेषज्ञों के मत के विरुद्ध एलन वाइट के इस अधिकार को रखता है कि फारसी उलाई नदी शिनार की महान नदियों में से एक है। उलाई नदी का प्रतीक मनुष्य के वचन और परमेश्वर के वचन के बीच एक परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या मनुष्य सही है या बहन वाइट द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्द सही हैं? क्या उलाई नदी पर्सिया की एकमात्र नदी का प्रतिनिधित्व करती है या वो एक भविष्य सूचक नदी का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें एदन के जल मनुष्यों के जल के साथ मिले हुए हैं? इस दुविधा के कई संभावित समाधान हो सकते हैं, पर मैं कुछ विचार सामने रखूंगा ताकि आप मेरी बात समझ सकें। क्या सांसारिक इतिहासकार और धर्मशास्त्री सही हैं और सिस्टर वाइट गलत है? इस पर कोई विवाद नहीं है कि शिनार की महान नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटिस हैं। तो जब सिस्टर वाइट फारस की उलाई नदी को शिनार की एक महान नदी के रूप में पहचानती हैं तो क्या वो झूठी भविष्यद्वक्ता हैं या वो एक सच्ची भविष्यद्वक्ता हैं जिन्होंने गलती की? कोई सच्चा भविष्यद्वक्ता सीमा लांघकर झूठा भविष्यद्वक्ता बनने से पहले कितनी गलतियां कर सकता है? या इतिहासकार गलत है या वास्तव में वही सही हैं? या इतिहासकार और सिस्टर वाइट दोनों ही सही हैं? मैंने ये दुविधा इसलिए उठाई है कि इसकी व्याख्या को उस व्यक्ति के लिए एक अतिरिक्त बिंदु के रूप में प्रयोग कर सकूं जो सन के वस्त्रों में है, नदी पर खड़ा है और जिससे कब तक पूछा गया है। हिद्देकेल और उलाई दोनों नदियों के दर्शन में
दानियल के 8वें अध्याय में दानियल फारस के सूसा में है और सूसा उलाई नदी के किनारे स्थित है जो कृषि उद्योग के कारण अपनी प्राकृतिक धारा के साथ साथ मानव निर्मित नहरों की एक श्रृंखला को भी समेटे हुए है। जैसे ही उलाई लगभग 150 मील और नीचे की ओर बहती है वह टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के संगम से जुड़ जाती है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो एडेन में आरंभ हुई थी अंततः मिलती हैं, और जब वे मिलती हैं तो फारस की उलाई नदी भी उसी स्थान पर आकर जुड़ती है। जब उलाई नदी टिग्रिस और यूफ्रेटिस के संगम पर टिग्रिस के दलदली तंत्र से मिलती है तब उलाई शिनार की महान नदियों के जल का एक भाग बन जाती है। इतिहासकार सही है और सिस्टर वाइट भी सही है।
जब सिस्टर वाइट 8वें अध्याय में उलाई के दर्शन की पहचान करती है तो वे उस नदी की पहचान कर रही होती है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों को जोड़ने वाली मानव निर्मित नहर प्रणाली के लिए जानी जाती है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस 3,220 वर्षों की दो अवधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो 1799 और 1800 हो तक के लिए तय करती है। टाइग्रिस का एक प्राचीन नाम हिद्देकेल है और यूफ्रेटिस के संदर्भ में इन दोनों नदियों को भविष्यवाणी में विशेष रूप से अश्शूर और बाबुल से संबद्ध ठहराया गया है। इन्हें ईश्वर की भेड़ों को ताड़ना देने वाले दो सिंहों के रूप में भी पहचाना गया है। वे दो उजाड़ने वाली शक्तियां मूर्ति पूजक रोम और पापल रोम की दो उजाड़ने वाली शक्तियों का पूर्व रूप थीं जो एक पुरुष और एक स्त्री या कहे तो कलीसिया और राज्य के प्रतीक हैं। मूर्ति पूजक रोम पुरुष था जो राज्य शासन की कला का प्रतिनिधित्व करता था और पापल रोम कलीसियाई शासन की अशुद्ध स्त्री है। उनके भविष्य सूचक संबंध में अश्शूर पुरुष था और बाबुल स्त्री। इस प्रकार टाइग्रिस यूफ्रेटिस को स्त्री ठहराया गया।
टाइग्रिस नदी राज्य कला की वो नदी है जो 1798 तक पहुंची और चर्च शासन की फरात
1844 तक पहुंची। फरात को 1844 तक पहुंचना ही था, क्योंकि 1844 का संदेश बाबेल अर्थात फरात के बारे में था, जो 1844 में फिर गिर पड़ा। जब 1844 में फरात ने एक जलप्रपात उत्पन्न किया, तो उलाय नदी, जो मानव कृतियों के प्रतीक के रूप में संगम में भी आ मिली थी, दूसरी नदी के जल के साथ मिल गई। राज्यकला की नदी को 1778 तक बांध दिया गया, जब पोप सत्ता से नागरिक अधिकार हटा दिए गए। उसी वर्ष संयुक्त राज्य बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी के पशु और छठे राज्य के रूप में शासन करना शुरू करता है। टाइग्रिस नदी को 1778 में बांध दिया गया, ठीक वहीं जहां राज्य अंततः पूरे विश्व को उस बांध को तोड़ने के लिए बाध्य करेगा, जो अभी पोप उत्पीड़हान की बाढ़ को रोके हुए है, जो शीघ्र ही प्रचंड बाढ़ की तरह संसार पर छा जाने वाली है। वो दीवार, या कहें बांध, चर्च और राज्य के पृथककरण की दीवार है।
1844 में यूफ्रेटिस और उलाय दोनों इस बात की पहचान कराते हैं कि 1844 का संदेश बाबुल का पतन है, और साथ ही वही कार्य भी है जिसे मसीह ने 1844 में आरंभ किया, जब वाचा के दूत के रूप में उसने उन लोगों के भीतर से, जो उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाले थे और जिन्हें परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले शुद्ध किया जाना आवश्यक था, बाबुल के जल और मानवीय कर्मों को शुद्ध कर निकाल दिया। उन लोगों का अंतिम शुद्धिकरण उस वर्षा से पूरा हुआ, जो आधी रात की पुकार के संदेश के अंतर्गत उंडेली गई, और आधी रात की पुकार के संदेश की वे वर्षा बूंदें टाइग्रिस के जल से आसूत की गई थीं। जब मिलरवादियों ने पापल रोम और 1799 की पहचान की, और जब उन्होंने बाबुल के पतन की पहचान की, और बंद दरवाजे से पहले ही संदेश द्वारा शुद्ध किए गए, या यूं कहें उलाय, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के आसुत जल से आई वर्षा द्वारा शुद्ध किए गए, जब उन्होंने दानियल 8:14 का संदेश प्रस्तुत किया और प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित के दिन के खुलने से पहले आधी रात की पुकार के संदेश को पूरा किया। जब दानियल के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में मसीह हिद्देकल के जलों पर खड़े हैं, तब वे टिग्रिस के जलों पर खड़े हैं। उस दर्शन में राज्य कौशल के जल, जो मानवीय राज्य कौशल की अंतिम गतियों का खाका प्रस्तुत करता है, जो परख काल के समापन तक ले जाती हैं, वो वहां खड़े होकर पिछली आयत के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उलाय नदी के दर्शन में सन के वस्त्र पहने मनुष्य, जो वहां पालमोनी अद्भुत गणनाकार है, पिछली आयत के एक प्रश्न का उत्तर देता है। दोनों ही प्रसंगों में वार्तालाप स्वर्गीय है, स्वर्गदूतों और मसीह के बीच का, और दोनों ही में प्रश्न यही है, कब तक? उत्तर है 3200 दिनों तक, और अध्याय 8 तथा अध्याय 12 में ये एक समय, समयों और आधा समय है। इस उत्तर को 3200 वर्षों और 260 वर्षों के रूप में समझा गया है, पर 1884 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी संदेश के भीतर समय के अनुप्रयोग पर निषेध लगा दिया, क्योंकि अब समय नहीं रहा। लिनन पहने हुए पुरुष पलमोनी का अपनी अंतिम पीढ़ी के लिए उत्तर क्या है? कब तक के प्रश्न के संबंध में अनेक साक्ष्यों द्वारा यह दिखाया गया है कि उसका उत्तर रविवार का कानून है। तो क्या पवित्र स्थान का शुद्धिकरण रविवार के कानून पर होता है? और क्या ये सब आश्चर्य रविवार के कानून पर समाप्त होते हैं? रविवार के कानून पर जो आश्चर्य समाप्त होते हैं, वे क्या हैं? और वे आश्चर्य कब आरंभ हुए?
तब मैं दानियल ने देखा, और देखे, वहां दो और खड़े थे, एक नदी के तट के इस पार और दूसरा नदी के तट के उस पार। और उनमें से एक ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से, जो नदी के जल के ऊपर खड़ा था, कहा, इन अद्भुत बातों का अंत कब तक होगा? और मैंने सन के वस्त्र पहने हुए उस पुरुष को सुना, जो नदी के जल पर था, जब उसने अपना दाहिना और बायां हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा कि ये एक काल, दो काल और आधा काल तक होगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर करने का काम पूरा कर चुका होगा, तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी। दानियल 12:72।
कब तक का प्रतीकात्मक प्रश्न रविवार के कानून को चिह्नित करता है, और स्वर्गदूत ने ये नहीं पूछा कि रविवार का कानून कब है, बल्कि ये कि आश्चर्यों का अंत कब है। आश्चर्यों का अंत रविवार के कानून पर होता है, तो वे कौन से आश्चर्य हैं जो रविवार के कानून तक ले जाते हैं, या अधिक सटीक रूप से हिद्देकेल के द्वारा दिया गया दर्शन जो अध्याय 10 से 12 तक में प्रस्तुत है, उसमें कौन से आश्चर्य दर्शाए गए हैं। यदि हम ये निर्धारित कर सकें कि आश्चर्य क्या है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आश्चर्य कब शुरू होते हैं। दानियल 10 में गब्रियेल ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि दर्शन के दौरान दानियल के साथ अपनी बातचीत का उसका उद्देश्य क्या था।
अब मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा, क्योंकि ये दर्शन अभी भी बहुत दिनों के लिए है। दानियल 10:14।
गब्रियेल परमेश्वर की प्रजा को ये समझाने आया कि अंतिम दिनों में उनके साथ क्या होगा। दानियल 12 की उन भविष्यवाणियों को जिन्हें मिलरवादियों ने सही समझा था, सही मान लेना, पर उसी स्वीकारोक्ति का सहारा लेकर इस अध्याय का अंतिम दिनों में अनुप्रयोग नकार देना, गब्रियेल के बताए उद्देश्य को निष्फल करना है। जब एक बार गब्रियेल 11वें अध्याय के पहले पद से भविष्य सूचक वर्णन आरंभ करता है और 12वें अध्याय के तीसरे पद तक उसे आगे बढ़ाता है, तब जो इतिहास प्रस्तुत होता है वो इस बात का सबाय भविष्य सूचक विवरण है कि अजगर, पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता संसार को हर्मगिदोन तक कैसे ले जाते हैं। उस अध्याय में ऐसे खंड भी हैं जो परमेश्वर की प्रजा के सताए जाने का वर्णन करते हैं, परंतु 11वें अध्याय का इतिहास मुख्यतः बाह्य प्रकटीकरण है। इसका अर्थ ये है कि दानियल के अंतिम दर्शन में अध्याय 10 और अध्याय 12 अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय के विपरीत वे दोनों एक आंतरिक संदेश का वर्णन करते हैं जो 144,000 के मुहरबंद किए जाने की पहचान कराता है। मध्य अध्याय मानव जाति के विद्रोह का है जो उत्तर के राजा अर्थात रोम के पोप द्वारा दर्शाया गया है, और अल्फा अध्याय 10 ओमेगा अध्याय 12 के साथ मिलकर अंतिम दिनों में 144,000 के आंतरिक अनुभव की पहचान कराते हैं। ये तीनों अध्याय अनुग्रह काल के समापन तक ले जाते हैं। अल्फा अध्याय परमेश्वर के भय से आरंभ होता है जो उपासना करने वालों के दो वर्गों को अलग कर देता है, और अध्याय के अंत तक दानियल को दोगुनी सामर्थ्य दी जाती है। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेश की पहचान कराता है। 12वां अध्याय ओमेगा अध्याय है और वो तीसरे स्वर्गदूत के न्याय संदेश की पहचान कराता है। 11वां अध्याय यरूशलेम के विनाश से लेकर परिभिक्षा के समापन तक मनुष्य जाति के विद्रोह का विवरण देता है जो सिस्टर वाइट के अनुसार संसार के अंत में परिभिक्षा के समापन का एक चित्रण है। दानियल अध्याय 11 यरूशलेम के विनाश से आरंभ होता है क्योंकि दानियल उन लोगों में से था जिन्हें यरूशलेम के 3 बार हुए विनाश के दौरान बाबुल ले जाया गया था, जो 70 ईस्वी में उसी नगर के विनाश का प्रतिरूप था, और फिर अंतिम दिनों में जब उस नगर का प्रतिनिधित्व संसार करता है। यरूशलेम के 2 वास्तविक विनाश जो वर्ष के एक ही दिन पर आपस में 635 वर्ष के अंतराल से हुए, वे दोनों विनाश उस नगर के थे जहां वाचा का संदूक स्थित होना माना जाता था। शिलो में वही भविष्य सूचक विशेषताएं थीं, और वो ऐसे नगर के प्रथम विनाश का प्रतिनिधित्व करता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति स्थित थी या स्थित मानी जाती थी। जब सिस्टर वाइट यरूशलेम के विनाश को अंतिम दिनों के विनाश का प्रतीक बनाकर प्रयोग करती हैं, तब वे यरूशलेम के विनाश पर मसीही के उपदेश पर टिप्पणी कर रही होती हैं। शिलो और नबुकदनेस्सर तथा तीतुस के अधीन यरूशलेम का विनाश, ये तीनों परमेश्वर के नगर के विनाश द्वारा दर्शाए गए अंतिम दिनों के 3 साक्षी हैं। शिलो पहला स्वर्गदूत का संदेश है जो परमेश्वर का भय मानना जो एली ने नहीं किया और उसे महिमा देना जो एली ने नहीं किया सिखाता है, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। दूसरा स्वर्गदूत का संदेश वो है जहां हमें नबुकदनेस्सर और तीतुस में एक दोहराव दिखाई देता है। अंतिम दिनों में यरूशलेम का तीसरा विनाश अनुग्रह काल के समापन पर होता है जो न्याय का समापन है। 11वां अध्याय 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का बाह्य इतिहास है। ये 10वें अध्याय के विभाजन संबंधी दर्शन और डैनियल के दर्शन के 22वें दिन होने वाले 3 सामर्थ्य प्रदान करने वाले स्पर्शों के बीच स्थित है। इसका अर्थ ये है कि 12वां अध्याय भी अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों पर घटने वाली बातों की आंतरिक कथा के बारे में होगा। ये भी दर्शाता है कि 12वें अध्याय के भीतर का प्रकाश 10वें अध्याय के प्रकाश से 22 गुना अधिक उज्ज्वल है। उलाई के दर्शन में मसीह से भी कब तक पूछा गया? 13वें पद में आए प्रश्न तक ले जाने वाले पहले के 12 पद बाइबिलीय भविष्यवाणी की शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने वाले बाहरी भविष्य सूचक इतिहास की पहचान कराते थे। वे 12 पद केवल अध्याय 7 में प्रस्तुत इतिहास को दोहरा रहे थे और उस पर विस्तार कर रहे थे। उन्हीं पदों में प्रस्तुत भविष्य सूचक इतिहास को अध्याय 11 में मादी और फारसियों के समय से आरंभ करके फिर दोहराया गया है और विस्तार से रखा गया है। अध्याय 8 के अंतिम आधे भाग और पूरा अध्याय 9 परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा का भविष्यद्वक्ता दानियल द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व है। उलाई नदी के दर्शन के 3 अध्यायों में मिलने वाला भविष्य सूचक इतिहास और उन अध्यायों में गब्रेल के साथ दानियल की सहभागिता के माध्यम से परमेश्वर की प्रजा का जो प्रतिनिधित्व है, मिलकर अध्याय 10 से 12 तक का अल्फा से ओमेगा है, क्योंकि हिद्दे के वियले ओमेगा है और उलाई अल्फा। इसलिए अंत का समय आ पहुंचने पर 12वें अध्याय में जो प्रकाश अमुहूर्त होता है, वो उस दर्शन से 22 गुना अधिक उज्ज्वल है जो एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ और नींव है। ऐसा होने पर दानियल के अंतिम दर्शन का प्रकाश सीधे तौर पर अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा से संबद्ध प्रकाश के रूप में पहचाना जाता है। जब स्वर्गदूत सन के वस्त्र पहने हुए उस पुरुष से पूछता है, इन अद्भुत बातों का अंत कब होगा, तो वे अद्भुत बातें वे ही है जो सदा सर्वदा तारों के समान चमकते हैं, जैसा कि अब्राम के वाचा इतिहास में अब्राम को तारों की ओर देखने की आज्ञा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। दानियल 12 में बताई गई अद्भुत बातें ये हैं कि मनुष्य रूपांतरित होकर 144,000 के प्रतीक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। पूर्व में हमने ये पहचाना था कि दानियल अध्याय 12 का 11वां पद एक भविष्यवाणी का काल बताता है जो 2 अवधियों से मिलकर बना है, जिनमें से पहली 30 वर्ष की है। पद 11 पर उचित जोर देने के लिए मैं पद 7 पर गया, ताकि ये दिखाऊं कि अंतिम दिनों में वो अपने लोगों के बीच जो अद्भुत कार्य करता है, उनमें मसीह की प्रत्यक्ष भागीदारी है। 11वीं आयत पर लौटते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 12वां अध्याय गब्रियल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतिम दिनों के रूप में कहा गया है। 144,000 के दिनों में वे दिन जब वे मुहर बंद किए जाते हैं और परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करते हैं, दानियल की पुस्तक के अनुसार एक ऐसा संदेश जिसकी मुहर खोली जाएगी, जो फैलकर एक जोरदार पुकार बन जाएगा। उस संदेश को 12वें अध्याय में 3 भिन्न भविष्य सूचक अवधियों द्वारा दर्शाया गया है, जिनकी परिभाषा मिलरवादियों ने पहले ही कर दी है और बाद में भविष्यवाणी की आत्मा ने उसकी पुष्टि की है। वे तीनों अवधियां समय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि वही स्वर्गदूत जो 12वें अध्याय में दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाता है, प्रकाशित वाक्य 10 में एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाता है और शपथ खाता है कि अब समय ना रहेगा। 1844 की वो घोषणा का अर्थ है कि दानियल 12 की 3 भविष्य सूचक अवधियां प्रतीकात्मक अवधियां हैं, जिनका उद्देश्य समय का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। इसलिए जब दानियल के 12वें अध्याय में मध्य का प्रतीकात्मक भविष्यवाणी काल एक दोहरा काल होता है जो 30 वर्षों से आरंभ होता है उसी अध्याय में जिसमें मिकाएल खड़ा होता है, तब ये ज्ञात होता है कि 30 वर्षों से आरंभ होने वाला वो दोहरा काल अब्राम की अल्फा भविष्यवाणी की सिद्ध पूर्ति है, चुने हुए लोगों के संदर्भ में वाचा इतिहास का आरंभ कराने वाली समय भविष्यवाणी का ओमेगा अपनी सिद्ध पूर्ति उसी अध्याय में प्राप्त करता है, जो दानियल की इस गवाही का चरम है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों पर क्या बीतेगा। अंत के समय दानियल की पुस्तक की मुहर खोली जाती है और जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो परमेश्वर की प्रजा पर मुहर लगाता है। अंत के समय दानियल की पुस्तक की मुहर खोली जाती है और जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो दानियल के अंतिम अध्याय में निहित तीन भविष्य सूचक अवधियों द्वारा दर्शाया गया है। वो अध्याय हिद्देकेल दर्शन के तीन अध्यायों का ओमेगा है और हिद्देकेल दर्शन दानियल के नदी दर्शनों के अल्फा का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अध्यायों के संदर्भ में ओमेगा है। एदेन में जो नदियां आरंभ हुई थीं वे अंततः दानियल के पास आकर ठहरी और फिर परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन ने उन्हें पहले और दूसरे स्वर्गदूत के मिलराइट आंदोलन तक पहुंचाया, जो तीन स्वर्गदूतों के दो आंदोलनों का अल्फा आंदोलन है। पद 11 के 1890 वर्ष अब्राम और पौलुस की 417 वर्षीय भविष्यवाणी के ओमेगा है। दानियल 15 और उसका अब्राम की भविष्यवाणी से संबंध आगे बढ़ाने से पहले ये याद रखना अच्छा होगा कि पौलुस कौन थे। पौलुस केवल अन्य जातियों के लिए प्रेरित ही नहीं थे, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्होंने अपना संदेश परमेश्वर के भविष्यद्वाणी वचन के माध्यम से प्रस्तुत किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि पौलुस एक युग व्यवस्थात्मक भविष्यद्वक्ता थे। युग व्यवस्थात्मक भविष्यद्वक्ता वो होता है जिसे परमेश्वर की प्रजा को एक युग व्यवस्था से दूसरी में ले जाने के लिए उठाया जाता है, मूसा के समान, वेदी उपासना से पवित्र स्थान उपासना तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पृथ्वी के पवित्र स्थान से स्वर्गीय पवित्र स्थान तक। शाब्दिक से आत्मिक के अनुप्रयोग के विषय में पौलुस ने जितनी जानकारी और नियम लिखे उतने अन्य सब बाइबल लेखक मिलकर भी नहीं लिख पाए, कहीं अधिक। परमेश्वर की वाचा प्रजा के संदर्भ में शाब्दिक से आत्मिक में होने वाले संक्रमण को समझाने के लिए ही उन्हें उठाया गया था। जब वो चुनी हुई प्रजा शाब्दिक से आत्मिक रूप में परिवर्तित हुई तब अब्राहम की चुनी हुई प्रजा की वाचा प्रतिज्ञाओं को जोड़ने वाली कड़ी पौलुस हैं। यदि आप वाचा इतिहास में पौलुस कौन थे, उनकी भूमिका को भली भांति नहीं समझते, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि ये कितनी दिव्य रूप से उपयुक्त बात है कि परमेश्वर की वाचा प्रजा के संबंध में पहली समय भविष्यवाणी एक दोहरी समय भविष्यवाणी है जो 30 वर्ष की अवधि से आरंभ होती है। एक भविष्यवाणी चुनी हुई प्रजा के पिता ने स्थापित की और जब वे आत्मिक चुनी हुई प्रजा में रूपांतरित हुए तो उस रूपांतरण की पहचान कराने और उसे समझाने के लिए एक युग व्यवस्था का भविष्यद्वक्ता उठाया गया और उसने पुराने नियम की पहली साक्षी के अनुरूप नए नियम की दूसरी साक्षी के द्वारा अब्राम की समय भविष्यवाणी की भी पुष्टि की। आरंभ में अब्राम और अंत में पौलुस अंतिम दिनों के 490 के महत्व का प्रतिरूप ठहरते हैं। हम अगले लेख में जारी रखेंगे।
जकरिया को यहोशू और स्वर्गदूत के विषय में जो दर्शन मिला वो महान प्रायश्चित के दिन के समापन दृश्यों में परमेश्वर की प्रजा के अनुभव पर असाधारण बल के साथ लागू होता है। तब शेष कलीसिया को बड़े परीक्षा और क्लेश में डाला जाएगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु का विश्वास रखते हैं वे अजगर और उसकी सेनाओं के क्रोध को अनुभव करेंगे। शैतान संसार को अपनी प्रजा मानता है, उसने बहुत से नामधारी मसीहियों पर भी अधिकार पा लिया है, पर यहाँ एक छोटी सी मंडली है जो उसकी सर्वोच्चता का विरोध कर रही है। यदि वो उन्हें पृथ्वी से मिटा सके तो उसकी विजय पूर्ण हो जाएगी, जैसे उसने इसराइल को नाश करने के लिए अन्य जाति राष्ट्रों को उकसाया था, वैसे ही निकट भविष्य में वो पृथ्वी की दुष्ट शक्तियों को भड़का देगा कि वे परमेश्वर की प्रजा का नाश कर दें। लोगों से ये अपेक्षा की जाएगी कि वे दिव्य व्यवस्था के विरुद्ध जाकर मानवीय फरमानों का पालन करें। जो परमेश्वर के प्रति सच्चे होंगे उन्हें धमकाया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी और उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। वे माता पिता और भाइयों और संबंधियों और मित्रों तक से धोखा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु तक। लूका 21:16। उनकी एकमात्र आशा परमेश्वर की दया में है, उनकी एकमात्र रक्षा प्रार्थना होगी। जैसे यहोशू ने स्वर्गदूत के सामने विनती की वैसे ही शेष कलीसिया टूटे हुए हृदय और अडिग विश्वास के साथ अपने अधिवक्ता यीशु के द्वारा क्षमा और उद्धार के लिए विनती करेगी। वे अपने जीवन की पापमयता से पूरी तरह सचेत हैं, वे अपनी दुर्बलता और अयोग्यता को देखते हैं और वे निराश होने को तैयार है। प्रलोभक उन पर आरोप लगाने को खड़ा रहता है जैसे वो यहोशू का विरोध करने के लिए खड़ा था। वो उनके मैले वस्त्रों और उनके दोषपूर्ण चरित्रों की ओर इशारा करता है। वो उनकी दुर्बलता और मूर्खता, उनकी कृतज्ञता के पाप और मसीह से उनकी असमानता को सामने रखता है, जिससे उनके उद्धारकर्ता का अपमान हुआ है। वो उन्हें इस विचार से डराने का प्रयत्न करता है कि तोन का मामला आशाहीन है, कि उनकी अपवित्रता का दाग कभी धुल नहीं सकेगा। वो उनके विश्वास को इस हद तक नष्ट करने की आशा करता है कि वे उसके प्रलोभनों के आगे झुक जाएं और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा से फिर जाए। शैतान को उन पापों का सटीक ज्ञान है जिनके करने के लिए उसने परमेश्वर के लोगों को प्रलोभित किया है, और वो उनके विरुद्ध अपने आरोप लगाता है, ये कहते हुए कि अपने पापों के कारण उन्होंने दैवी संरक्षण खो दिया है, और ये दावा करते हुए कि उन्हें नष्ट करने का उसे अधिकार है। वो उन्हें परमेश्वर की कृपा से बहिष्कृत किए जाने के लिए अपने जितना ही योग्य ठहराता है। क्या यही वे लोग हैं, वो कहता है, जो स्वर्ग में मेरा स्थान और मेरे साथ जुड़े स्वर्गदूतों का स्थान लेने वाले हैं? वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, पर क्या उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है? क्या वे परमेश्वर से अधिक अपने आप से प्रेम करने वाले नहीं रहे? क्या उन्होंने उसकी सेवा से ऊपर अपने स्वार्थों को नहीं रखा? क्या उन्होंने संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं किया? उन पापों को देखो जिन्होंने उनके जीवन पर छाप छोड़ी है। देखो उनका स्वार्थ, उनकी दुष्टता, एक दूसरे के प्रति उनकी घृणा। क्या परमेश्वर मुझे और मेरे स्वर्गदूतों को अपनी उपस्थिति से निकाल देगा और फिर भी उन्हीं पापों के दोषियों को पुरस्कृत करेगा? हे प्रभु, न्याय के अनुसार तू ये नहीं कर सकता। न्याय ये मांग करता है कि उनके विरुद्ध दंडादेश सुनाया जाए। परंतु यद्यपि मसीह के अनुयायियों ने पाप किया है, उन्होंने अपने आप को शैतानी शक्तियों के नियंत्रण में सौंप नहीं दिया है। उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है और विनम्रता तथा अनुताप में प्रभु की खोज की है, और दिव्य मध्यस्थ उनके पक्ष में निवेदन करता है। वो जिसे उनकी कृतज्ञता से सबसे अधिक ठेस पहुंची है, जो उनके पाप को और उनके पश्चाताप को भी जानता है, कहता है, प्रभु तुझे डांटे, हे शैतान, मैंने इन आत्माओं के लिए अपना जीवन दे दिया है। ये मेरी हथेलियों पर खुदी हुई हैं। इनके चरित्र में कमियां हो सकती हैं, वे अपने प्रयासों में असफल भी हुए हों, परंतु इन्होंने पश्चाताप किया है और मैंने इन्हें क्षमा कर स्वीकार कर लिया है। शैतान के हमले प्रबल हैं, उसके छल प्रपंच अत्यंत सूक्ष्म हैं, परंतु प्रभु की दृष्टि उसके लोगों पर बनी हुई है। उनका क्लेश बड़ा है, भट्टी की ज्वालाएं मानो उन्हें भस्म कर देने वाली हों, परंतु यीशु उन्हें आग में परीक्षित सोने के समान बाहर निकालेगा। उनकी सांसारिकता दूर कर दी जाएगी ताकि उनके द्वारा मसीह का स्वरूप पूर्णतः प्रकट हो सके। कभी कभी प्रभु ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो उसने अपनी कलीसिया के खतरों और उसके शत्रुओं द्वारा उसे पहुंचाई गई हानि को भुला दिया हो, परंतु परमेश्वर ने नहीं भुलाया है। इस संसार में परमेश्वर के हृदय को उसकी कलीसिया से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। उसकी ये इच्छा नहीं है कि दुनियावी नीति उसके अभिलेख को भ्रष्ट करे। वो अपने लोगों को शैतान के प्रलोभनों से पराजित होने के लिए नहीं छोड़ता। जो लोग उसे गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं वो उन्हें दंड देगा, परंतु जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं उन सब पर वो कृपा करेगा। जो लोग उससे मसीही चरित्र के विकास के लिए शक्ति मांगते हैं उन्हें वो आवश्यक सारी सहायता देगा। अंत के समय में परम ईश्वर के लोग देश में किए जा रहे घोर घृणित कर्मों के लिए आहें भरेंगे और रोएंगे। आंसुओं के साथ वे दुष्टों को ईश्वरीय व्यवस्था को रौंदने के खतरे के विषय में चेतावनी देंगे, और अवर्णनीय शोक के साथ वे प्रभु के सामने पश्चाताप में अपने आप को दीन करेंगे। दुष्ट उनके शोक का उपहास करेंगे और उनकी गंभीर विनतियों का मखौल उड़ाएंगे, परंतु परम ईश्वर के लोगों का ये क्लेश और दीनता इस बात का अचूक प्रमाण है कि वे पाप के परिणाम स्वरूप खोई हुई चरित्र की शक्ति और महानता को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ये इसलिए है कि वे मसीह के निकट आते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें उसकी सिद्ध पवित्रता पर टिकी हुई हैं कि वे पाप की अत्यधिक पापमयता को इतने स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। नम्रता और दीनता ही सफलता और विजय की शर्तें हैं। जो क्रूस के चरणों में झुकते हैं उनके लिए महिमा का मुकुट प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर के विश्वास योग्य प्रार्थनाशील जन मानो उसके साथ घिरे हुए हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि वे कितनी दृढ़ता से संरक्षित हैं। शैतान के उकसावे से इस संसार के शासक उन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यदि परमेश्वर की संतानों की आंखें दोतान में एलीशा के सेवक की भांति खोल दी जाए, तो वे अपने चारों ओर डेरा डाले परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखेंगे, जो अंधकार की सेवताओं को रोके हुए हैं। जब परमेश्वर के लोग उसके सम्मुख अपनी आत्माओं को दीन करते हैं और हृदय की शुद्धता के लिए विनती करते हैं, तब ये आज्ञा दी जाती है, मैले वस्त्र दूर करो, और ये उत्साहजनक वचन कहे जाते हैं, देख, मैंने तेरी अधर्मता तुझसे दूर कर दी है और मैं तुझे नए वस्त्र पहनाऊंगा। जकर्याह 3:4 मसीह की धार्मिकता का निर्मल वस्त्र परमेश्वर के उन विश्वास योग्य बच्चों पर रखा जाता है जिन्होंने परीक्षाएं और प्रलोभन सहे हैं। तिरस्कृत बचे हुए जन गौरवशाली परिधान पहनाए जाते हैं, ताकि वे फिर कभी संसार की भ्रष्टताओं से मलिन ना हों। उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में बने रहते हैं और वे सब युगों के विश्वासियों में दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने धोखा देने वाले की चालों का प्रतिरोध किया है, अजगर की दहाड़ से उनकी निष्ठा नहीं दिखी। अब वे प्रलोभन देने वाले की युक्तियों से सदा के लिए सुरक्षित हैं। उनके पाप पाप के प्रवर्तक पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। उनके सिरों पर एक स्वच्छ पगड़ी रखी जाती है। जब शैतान अपने आरोपों को जोर देकर प्रस्तुत कर रहा है, तब अदृश्य पवित्र स्वर्गदूत इधर उधर आते जाते हुए विश्वास योग्य लोगों पर जीवित परमेश्वर की मुहर लगा रहे हैं। ये वे हैं जो मेमने के साथ सियोन पर्वत पर खड़े हैं और उनके ललाट पर पिता का नाम लिखा हुआ है। वे सिंहासन के सामने नया गीत गाते हैं, वो गीत जिसे पृथ्वी से छुड़ाए गए 144,000 को छोड़ कोई मनुष्य सीख नहीं सकता। ये वे हैं जो मेमने के जहां कहीं जाने पर भी उसका अनुसरण करते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर तथा मेमने के लिए प्रथम फल हैं, और उनके मुंह में कोई छल नहीं पाया गया, क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। प्रकाशित वाक्य 14:7 फात। अब स्वर्गदूत के वचनों की पूर्ण पूर्ति हो चुकी है। अब सुन, हे महायाजक यहोशू, तू और तेरे सामने बैठे तेरे साथी, क्योंकि वे आश्चर्य के पात्र लोग हैं, क्योंकि देख, मैं अपने दास अंकुर को ले आऊंगा। जकर्याह 3:8 मसीहो अपने लोगों के छुड़ाने वाले और मुक्तिदाता के रूप में प्रकट होते हैं। अब सचमुच शेष बचे लोग आश्चर्य के पात्र हैं, क्योंकि उनकी यात्रा के आंसू और अपमान परमेश्वर और मेमने की उपस्थिति में आनंद और आदर को स्थान दे देते हैं। उस दिन यहोवा का अंकुर सुंदर और महिमामय होगा, और पृथ्वी का फल इज़राइल के बच निकले हुए लोगों के लिए उत्तम और मनोहर होगा। और ऐसा होगा कि सियोन में जो बचा रहेगा और यरूशलेम में जो शेष रहेगा, वो पवित्र कहलाएगा, अर्थात यरूशलेम में जीवितों में जिनका नाम लिखा है वे सब। यशाया 4:2-3 भविष्यद्वक्ता और राजा आत्सब पित्सात 5:9